स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहेमाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके साथ हम उनको धन्यवाद देते हैं जो लोग इस कार्यक्रम को सुनकर अपने पत्रों के माध्यम से अपने आशीषों को हम तक पहुंचाते हैं। यदि आपके पास भी कोई आशीष की बातें हैं, हमें अवश्य लिखें ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कह सकें। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज जो कुछ भी हम सीखें हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं। आप उनकी भी सहायता करें, अपनी शांति उन्हें प्रदान करें। इस अध्ययन पर हम आपके आशीष चाहते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि नहेमिया शहरपनाह को बनाने के पश्चात लोगों को वहां पर नियुक्त किया ताकि गाने वाले दल हो, बजाने वाले हो और परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हों। आज हमारा विषय है प्रार्थना और जागृति। आपको स्मरण होगा कि एज्रा का अध्ययन करते समय मैंने कहा था कि कुछ पुस्तकों के अध्याय 9 अति महान है। एज्रा अध्याय 9, नहेमिया अध्याय 9 और दानियल की पुस्तक अध्याय 9, ये सब अध्याय जागृति से संबंधित हैं। अब हम जागृति का अर्थ स्पष्ट समझ लें। यह शब्द प्रायः बहुत गलत समझा जाता है। इसका अर्थ है जीवन और शांति को पुनः प्राप्त करना। इसका एक अर्थ और भी है, पुनः चेतन अवस्था में आ जाना, जीवन का पतन होते होते मृत्यु आ जाना जिसमें शक्ति नहीं होती और फिर जीवंत हो जाना। रोमियों के पत्री 14 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस मसीह के पुनरुत्थान के लिए कहता है, वह जागृत हुआ, जी उठा कि मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। हमारा जागृति शब्द केवल विश्वासियों तक ही सीमित है। इसका संदर्भ उन विश्वासियों से है जो पतित आत्मिक दशा में हैं या पतित आत्मिक दशा से जीवन एवं शक्ति में लौट आए। इस अध्याय में जागृति से यही अभिप्राय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश जन यह देख चुके हैं कि इसका अर्थ विस्तृत होकर मसीह को ग्रहण करने वालों के लिए काम में आने लगा है। ये दोनों ही वास्तव में एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप आत्माएं जीत नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर के जनों में जागृति ना आ जाए। मेरे मित्रों, इस अध्याय में हम जागृति का समय देखेंगे जो व्यवस्था के पढ़े और सुने जाने का परिणाम था। यह बाइबल पाठ लंबे समय तक चला था और कितने समय तक यह मैं भी नहीं जानता। इज़रा ने जल फाटक के पास मंच पर चढ़कर व्यवस्था पढ़कर सुनाई थी और श्रोता रोए तथा विलाप किया। उन्होंने पहले कभी वचन नहीं सुना था, अतः वचन सुनने पर मन भावनाओं का उमड़ जाना स्वाभाविक ही था। उस समय श्रोताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था और वे कुछ करने को प्रेरित हुए। उन्हें यह बोध हुआ कि वे परमेश्वर के ठहराए हुए मानकों से कितना गिर गए हैं। हमने एज्रा की पुस्तक में देखा था कि एज्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ा। हमें यह अंतर ग्रहण करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन से हटकर जागृति आ ही नहीं सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डीएल मूडी के विचार में उसके युग के बाद जो जागृति आई वह परमेश्वर के वचन की जागृति है। काश हमारे आज के प्रचारक विधियों, भावनाओं, मनोदशा की अपेक्षा बाइबल सिखाने पर अधिक ध्यान दें। ये अन्य बातें जागृति कारक नहीं है। आइए आप मेरे साथ निकालिए नहेमिया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 और 2 पद। नहेमिया 9 उसका 1 और 2 पद। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इसराइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इसराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने अपने और अपने पुरखाओं के पापों को मान लिया अर्थात अंगीकार किया। तब आगे लिखा है नहेमिया 9 अध्याय के 3 पद में, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। परमेश्वर के वचन ने उन पर उनका पाप प्रकट किया। उपवास, टाट ओढ़ना और राख लगाना उनके मन सच्चाई को प्रकट करता है। पाप स्वीकारन और आराधना उनका अगला काम था। आज युवा पीढ़ी मेरी पीढ़ी की निंदा करती है और सही भी है। यदि वे परमेश्वर के वचन के पास आ जाते हैं तो वे अपना निंदा का स्वभाव त्याग देंगे और स्वीकार करेंगे कि हम कैसे चूक गए हैं, परंतु पहले वे अपने पापों को स्वीकार करें। मित्रों, आप और मैं किसी भी प्रकार के अंगीकार के योग्य नहीं हैं यदि हम पहले अपने पापों को ना मान लें। यदि आप सोचते हैं कि आपके लिए पापों का मानना नहीं है तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। इस्राएलियों ने दिन के चौथाई समय व्यवस्था को पढ़ा और सुना। उसके बाद जो उन्होंने सुना उस विषय में कुछ किया, पापों को स्वीकार किया। आप परमेश्वर को अपने स्तर तक नीचे नहीं ला सकते। अनेक मनुष्य ऐसा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर आप सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते कि परमेश्वर की बराबरी करें। यदि आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप स्वयं से धोखा करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है। पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में यह स्पष्ट है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़कर आपको यह बोध होता है कि आप पापी हैं। इस सच्चाई का सामना करके आप स्वयं ही अपने पापों का अंगीकार करना चाहेंगे। अंगीकार का अर्थ है अपने कर्मों को उचित सिद्ध करने या बहाने बनाने की अपेक्षा परमेश्वर के वचन को मान लेना है। अंगीकार में आप अपने कार्य एवं विचारों को मान लेते हैं कि वह पाप है। यह पापों का अंगीकार है। परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने अटारी में अपने शिष्यों के पांव धोए थे। वह आज भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर यही कर रहा है। वह हमें धोकर साफ कर रहा है। आप आज अपना मन, आंख और कान गंदे किए बिना सड़क पर नहीं चल सकते। आपके हाथ और पांव भी गंदे हो जाते हैं। इसी कारण हम परमेश्वर के पास जाकर अंगीकार करते हैं। फसह के भोजन के बाद यीशु भोज पर से उठा और अपने शिष्यों के पांव धोने आरंभ किए, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। पत्रस ने आपत्ति करते हुए कहा कि यीशु उसके पांव न धोए, तो यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। जी हाँ, आज अनेक जन परमेश्वर की सेवा करने के प्रयास में है, परंतु वे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं है। पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप कैसे चलते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप कहाँ चलते हैं। परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलने पर आप देखते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और तब आप स्वयं ही उसके पास अंगीकार करने आ जाते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो वह कहता है कि आपका उसके साथ कोई भी साझा नहीं, अर्थात उसके साथ सहभागिता नहीं। अतः इसराइलियों ने चौथाए दिन व्यवस्था सुनी और चौथाए दिन पाप का अंगीकार किया। रोमियों की पत्र के अध्ययन के बाद मुझे लगभग एक दर्जन पत्र मिले जिनमें लिखने वालों ने स्वीकार किया था कि वे मेरी बुराई करते थे। एक तो यहाँ तक लिखा कि वह कभी मुझसे घृणा करता था, उन्हें मेरे समझ पर अर्थात पाप स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि यह भी आवश्यक है कि जिसकी आपने बुराई की है उससे मेल करके स्थिति सुधारी जाए। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन ने इन मनुष्यों के जीवन को प्रभावित किया। यदि आप पर वचन का प्रभाव पड़ा है तो आप भी परमेश्वर के समक्ष पापों का अंगीकार करेंगे। यही जागृति का एकमात्र मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। मेरे विचार में उनका यह अंगीकार गुप्त था जिसके बाद उन्होंने अपनी बुराइयों को सुधारा। पेंतिकोस के दिन पत्रस ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि उसने किस प्रकार मसीह यीशु का इनकार किया था और श्रोताओं में जागृति आई। डॉक्टर लुका और पौलुस दोनों कहते हैं कि यीशु ने पत्रस को निजी दर्शन दिया था। वह एक निजी समस्या थी जिसका समाधान वे दो ही करते हैं। आप सबके सामने स्नान नहीं करते हैं, इसी प्रकार हमें भी सबके सामने पापों का अंगीकार नहीं करना है, यह निजी विषय है। शमौन पत्रस ने गुप्त रीति से अपने पाप का अंगीकार किया और सब ठीक हो गया। सार्वजनिक पाप स्वीकारन एक प्रकार की उत्तेजना है, जागृति नहीं। हमारे आज के युग में तो कम से कम इस प्रकार जागृति कभी नहीं आई है। हमें यह बात माननी होगी कि हम अपने आप को अन्य विश्वासियों से पृथक नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान दीजिए कि नहेमिया कहता है कि जब वे खड़े हुए तब उन्होंने पाप स्वीकार करते हुए कहा, हमने पाप किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि वह सार्वजनिक अंगीकार था। जागृति का आरंभ व्यक्तिगत है। कुछ लोगों का मानना है कि चार्ल्स फिनी कट्टरवादी था। मैं भी यही सोचता था, परंतु जब मैंने उसके कथन को पढ़ा तो अपने विचार बदले। उसने कहा, जागृति कोई चमत्कार नहीं है, परंतु जागृति के शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। जी हाँ, आप एक गोला बनाकर उसके बीच में खड़े होकर कहें, हे परमेश्वर, इस गोले में जागृति का आरंभ कर, और वहीं से जागृति आरंभ होगी। अंततः एलिया की जागृति एकाकी थी, अनेक अन्यों ने भी जागृति की इन शर्तों को पूरा किया है। मेरे मित्रों, इन इसराइलियों ने जागृति की शर्तों को पूरा किया और उन्हें विपुल आशीषें प्राप्त हुई। नहेमिया 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु बानी कदमियल शबन्याह बुन्नी शेरब्याह बानी और कनानी के लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु कदमियल बानी हशब्याना शेरब्याह हुदिया शबन्याह और पतहा नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो, तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। ऐसा अंगीकार सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करता है जहां मनुष्य खड़ा होकर सबका ध्यान आकर्षित करता है और सबको बताता है कि वह कैसा पापी है और वह लोगों की दृष्टि में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। मैंने तो यही देखा है। परमेश्वर का वचन सुनकर उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। इसके पश्चात उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और उसका नाम ऊंचा किया। हमें भी यही करना है। हमें अपनी आराधनालयों में उसका नाम ऊंचा करना है और उसकी स्तुति करना है। मुझे किसी सेवक ने बताया कि उनके साप्ताहिक सभा बड़ी नीरस हो गई थी। वे सदा ही एक सी प्रार्थना करते थे, अतः उसने निश्चय किया कि वही पुराने निवेदनों की अपेक्षा वे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसने कहा कि ऐसा करने से जागृति लगभग आ ही गई थी। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के बड़े और पवित्र नाम की स्तुति करना आरंभ करते हैं तब जागृति आती है। नहमिया 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। क्या आपने कभी समुद्री लहरों को चट्टानों पर वार करते देखा है? क्या उसे देख आपके मन में परमेश्वर की स्तुति का विचार नहीं आया? क्या कभी जंगल में आपको ऐसा अनुभव हुआ है? मैं घने जंगलों में गया हूँ। ओह, आज भी मुझे वो दिन याद हैं, जब मैं वहाँ पर अपने कुछ मित्रों के साथ प्रार्थना के लिए 3 दिन ठहरा हुआ था। मैंने परमेश्वर की आराधना की। वह सृजनहार है, उसने सब वृक्ष बनाए हैं, उसने जगत की सृष्टि की है। नहमिया 9 अध्याय उसके 7 पद से 10 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा, और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। इसराइलियों ने परमेश्वर की स्तुति की कि उसने कैसे उनके पितरों को पूर्व काल में संभाला था। उन्होंने अब्राहम के लिए परमेश्वर की स्तुति की, कनान में उसकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर की स्तुति की, उनकी जाति को मिस्र से निकाल लाने और अगुवाई करने के लिए उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की कि उसने कैसे कैसे चमत्कार किए, उनकी रक्षा की और जंगल में उनको संभाले रखा। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आप इस देश में हैं? नहमिया की प्रजा प्रसन्न थी कि वह इसराइली है। क्या आज आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए और उन तमाम उत्तम और भली आशीषों के लिए? उन्हें यह बोध हुआ कि परमेश्वर उनका सृजनहार ही नहीं, उनका मुक्तिदाता भी है। वे अपने मिस्र से मुक्ति के लिए परमेश्वर के आभारी थे। मित्रों, इन दो बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वह सृजनहार है, यह उसका जगत है, हम इस जगत के लिए उसके आभारी हैं। हमें उसके आभारी होना है कि उसने हमारा उद्धार किया है। प्रसंगवश, क्या आपने कभी उसे कहा कि आप उससे प्रेम करते हैं? हमें यह करना चाहिए। रविवार की प्रतीक्षा न करें कि वहाँ जब स्तुति गान करेंगे तब हम धन्यवाद देंगे। आप इस समय जहाँ भी हैं, वहीं पर आप सब आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। जी हाँ, वह सृजनहार है और उसने मुझे और आप सबको भौतिक आशीषें दी है। मैं इस कारण उसका आभारी हूँ। उसने मुझे या मुझ पापी को बचाया है, मैं इस कारण से उसका आभारी हूँ। वह कैसा अद्भुत परमेश्वर है जो मेरे पापों को क्षमा करता और मुझे आशीषें देता है। नहमिया 9 अध्याय के 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हमारे राजाओं और हाकिमों, याचकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं को और चेतावनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने इसराइल को कैसी आशीषें दी, परंतु उनके राजाओं, हाकिमों, याचकों और पुरखाओं ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। हमारे पास भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के अनेक विषय हैं, परंतु हम पाप में पड़े हैं। परमेश्वर कितने समय तक सहनशील होगा, हम क्यों उसे धन्यवाद नहीं देते हैं? आप सोचे, नहमिया 9 अध्याय के 36 पद में लिखा है, देख हम आजकल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, इसी में हम दास हैं। ध्यान दीजिए, इसराइलियों को यह बोध हुआ कि परमेश्वर का दंड उन पर मंडरा रहा था। क्या परमेश्वर हमें दंड देगा? मित्रों, हम उससे बच नहीं सकते। नहमिया 9 अध्याय उसके 37 और 38 पद में लिखा हुआ है, इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। वाचा की शर्तें अगले अध्याय में देखी जाएंगी। प्रत्येक अगुए को वाचा पर अपने मोहर लगाना है। उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने का संकल्प किया। आपने परमेश्वर के साथ कैसी वाचा बांधी है? मैंने अनेकों को कहते हुए सुना है कि वे किसी भी प्रकार की वाचा नहीं बांधेंगे, चाहे वह दान देने की हो या और बात हो। वे डरते हैं कि वे अपना वचन निभा नहीं पाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप किस्तों में कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको खाली चेक पर हस्ताक्षर करना होता है। मैं समझ नहीं पाता कि मनुष्य अन्य सब बातों में तो वाचा बांध लेता है, परंतु परमेश्वर के साथ वाचा बांधने में वे डरते क्यों हैं? मेरे मित्रों, यदि आप में निष्ठा है तो परमेश्वर के साथ वाचा बांध लें। ओह, कितने लोगों ने उसे निराश कर दिया है। क्या आप भी उसमें से हैं? परंतु वह अनुग्रहकारी है। यदि हम उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो वह भी हमारे साथ कुछ करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 10 में इसराइली परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं उसे देखेंगे। क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है? क्या आपने कभी परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा की है? वाचा एक गंभीर बात है, परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि प्रभु जानना चाहता है कि हम उसके साथ गंभीर हैं या नहीं। इस अध्याय में नहमिया अधिपति और 22 राज्यों का नाम है, वे वाचा बांधते हैं। लेवी अपना पारिवारिक नाम लिखते हैं, उनके 44 अगुओं के नाम भी दिए गए हैं। आइए आप मेरे साथ निकालिए नहमिया 10 अध्याय उसका 29 पद। नहमिया 10 अध्याय उसके 29 पद में लिखा हुआ है, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। उनकी वाचा में व्यवस्था पालन था। तीन बातें मुख्य थी जिनका उन्होंने पालन नहीं किया था। आइए देखें नहमिया 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है, हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। ध्यान रखें, यह इसराइल की एक सदा की समस्या थी। अब वे वाचा बांधते हैं कि वे अंतर जातीय विवाह नहीं करेंगे। तब क्या होता है? नहमिया 10 के 31 पद में लिखा है, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या विकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और सातवें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। दूसरी वाचा थी कि विश्राम के दिन वे व्यापार नहीं करेंगे और न ही किसी पर्व के दिन वे सातवां विश्राम वर्ष भी मानेंगे। मित्रों, अंतिम वाचा की पहली फल और बलिदानों के सामान की थी। अब मैं शेष वाचा का सार देता हूँ। आइए पढ़ें नहमिया 10 अध्याय उसके 32 से 39 पद। लिखा हुआ है, फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रति वर्ष एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों, बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इसराइल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंटे और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवीय दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवाये रहते हैं उनमें इसराइली और लेवीय अनाज नए दाख मधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटे पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर की भवन को न छोड़ेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर बाकी वाचा की बातें पाई जाती है और इन्होंने इसका उल्लंघन किया और यही कारण था कि वे बंधुआई में चले गए, लेकिन अब वे वापस आ गए हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं और तब हम पाते हैं कि जागृति कलीसिया में अर्थात उनके बीच में आती है। क्या आज आप अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? यदि आज आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक बातों को सीखा है और आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने कितना दिया है।
आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को।